ಕರಂ ವೀತುರಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮೋತಾಹಿ ಜಾತೆ ಭಯೇ ಅರ್ಹಂತಾದಿ ಜೋ ವಿದ್ಯಾದಿ ಸಾಗರ ಸುಧೀ ಜೋ ವಿದ್ಯಾದಿ ಸಾಗರ ಸುಧೀ ಗುರು ಹೇ ತೇಷೀ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಮೇ ನಿರತ ನಿತ್ಯ ಹಿತೋಪದೇಶೀ ವೇ ಪಾಪ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಮೇ ಜಲು ಹೇ ಸಯಾನೆ ಮುನ್ಕೆ ಸತತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಾನೆ ಪೂಜೋನ್ಕೆ ಸತತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪಾನೆ.
ಬೋಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ, ಚಾರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं. सबके मन में अपने जीवन को अच्छा बनाने की भावना भी होती है, लेकिन सबका अपना कॉन्सेप्ट अलग अलग है. दो तरह के आंदोलन इस देश में हैं, अपने जीवन को विकसित करने और अच्छा बनाने के. मैं ये बात एक प्रश्न के उत्तर में दे रहा हूं, और वो प्रश्न ये है कि जीवन में सब कुछ अचीव कर लेने के बाद भी एक रिक्तता क्यों महसूस होती है. बहुत बड़ी उपलब्धियां भी जिन क्षणों में बेमानी लगने लगती हैं, जिन क्षणों में अपना किया भी व्यर्थ जान पड़ता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने पर एक आदमी अपने मन को कैसे कंसंट्रेट करे और कैसे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े. और दूसरा प्रश्न भी इसी में, उत्तर इसी में समाहित है दूसरे प्रश्न का भी, कि जहां एक ओर इतना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरी ओर इतनी भव्यता से और धार्मिक अनुष्ठान होने लगे हैं, धर्मात्माओं की मंदिर में भीड़ अपेक्षाकृत अधिक हो गई है, इसके बावजूद भी आखिर उस मन की शांति और निर्मलता का क्या हुआ, वो कहां गायब हो गए, ये प्रश्न है और सामयिक है. सबके सामने है, बच्चों के, युवाओं के, बूढ़ों के, यहां तक कि श्रावक और साधु के भी, सबके सामने है. इसका समाधान कौन देगा? क्या कोई समाधान है? हम ढूंढें. देखें हम कि दो तरह का आंदोलन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सारे देश में है. एक है तकनीकी का आंदोलन, जहां कॉर्टेक्स से लेकर के चलना शुरू किया था जब रोड नहीं बने थे, और कॉर्टेक्स से बढ़ते बढ़ते और आज जेट तक हम आ गए हैं, जहां हाथ की चक्की से लेकर के आज रिमोट से सारी चीज हम कंट्रोल करने के ज्ञान को विकसित कर चुके हैं। आखिर इतना विकसित हमारा अपना ज्ञान, हमारा अपना सोच, हमारे जीवन को निर्मल और शांत क्यों नहीं बना पा रहा है? कॉर्पोरेट में चलने वाला भी उतना ही झगड़ालू, उतना ही लोभी, उतना ही मायाचारी, उतना ही अहंकारी था जितना कि आज जेट में बैठ करके अपनी यात्राओं को आसान बनाने वाला, जितना पहले एक अंगूठा लगाने वाला जिसे कि अपने हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था, वो जितना झगड़ालू, ईर्ष्यालु, अहंकारी और लोभी आज बहुत ऊंची शिक्षा पालने के बाद भी ये सारी चीजें उसके भीतर भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। आखिर क्या हुआ? इन चीजों ने हमारे मन की मलिनता और अशांति को दूर क्यों नहीं किया? हमने तो सोचा यही था कि अगर हम इन चीजों का विकास कर लेंगे तो हमारे जीवन की विकृतियां, हमारे जीवन की मलिनताएं हट जाएंगी, हमारा जीवन निर्मल होगा, आसान होगा, हम बहुत स्मूथली अपनी लाइफ को और मूव कर पाएंगे। लेकिन इसके मायने हैं कि कहीं कुछ मिस कर रहे हैं हम। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी कहीं कुछ मिसिंग है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं भव्य पंडाल हैं, जगरमगर लाइटें हैं, बड़े बड़े आयोजन हैं और धर्म के बहुत बड़े से बड़े पंचकलानक और बहुत से बड़े आयोजन हैं जिनमें सैकड़ों हाथी आए हैं, जिनमें टेंट हाउस वाले ने और राउटियां लगाई हैं जिनमें लोग रुकेंगे और उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन इस समान व्यवस्था के बाद लौटने वाले से पूछा जाए क्या पाया, अरे साहब क्या व्यवस्था थी, मजा आ गया, रुकने की क्या व्यवस्था थी साहब, और खाने की मत पूछो साहब, इतना शुद्ध घी था कि नाक फटी जा रही थी, इतनी बढ़िया गंध थी। उसके अपने एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो उतने बड़े अनुष्ठान से क्या लेके जा रहा है, उतने बड़े अनुष्ठान से उसने ये नहीं लिया कि कितनी बढ़िया बात कही गई थी, मैंने कितनी भव्यता से भगवान के दर्शन किए, उनसे वितरागता का मैंने पाठ सीखा, और इतना ही नहीं जो वहां पर मुनिजन थे, आचार्य भगवंत थे, उन्होंने हमारे जीवन के कल्याण के लिए जो बात कही वो मैं पाथे की तरह अपने साथ बांध के ले जा रहा हूं, ये कोई नहीं कहता। इसके मायने हैं कि वे सारी चीजें भी हमारे जीवन को निर्मलता और शांति नहीं दे पा रही हैं, वहां भी कुछ हम मिस कर रहे हैं। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन उसमें से जो गायब हो गया है अगर वो वहां उपस्थित हो जाए तो दोनों चीजें अपने आप में ठीक हो जाएंगी, दोनों आंदोलन अपने आप में सफल हो जाएंगे, दोनों आंदोलन अचीव करेंगे अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन को, फुलफिलमेंट को, इनर फुलफिलमेंट को, पीस को। क्या चीज मिस हो रही आप सोच सकते हैं? एक ही चीज, जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये गड़बड़ा गया है। उद्देश्य होना चाहिए था हमारी भावनाओं की निर्मलता। हर क्रिया के पीछे यदि भावना की निर्मलता हो तो वो क्रिया हमारे जीवन को बहुत संतोष देती है, शांति देती है और निर्मलता देती है। वो भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। भावनाएं मोहर की तरह हैं, कागज के टुकड़े की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उस पर जब मोहर लग जाए और लिख दिया जाए कि 100 रुपए आप कहीं भी ले जाइएगा, वो कागज का टुकड़ा भी आपको 100 रुपए दिलवा सकेगा। वैसे आप एक कागज का टुकड़ा ले जाए उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे अपने जीवन में हम देख रहे हैं हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है, ठीक है, आईक्यू तो अच्छा होना ही चाहिए। कल जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आई थी तब अपन ने यह समझा था हमारा बौद्धिक विकास, हमारी बौद्धिक क्षमताएं बढ़नी चाहिए और उनका हमें जरूर लाभ लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारा भावनात्मक विकास और हमारा आत्मिक विकास भी होना चाहिए। इस पर हमने अभी तक विचार नहीं किया। आईक्यू के साथ कोई ईक्यू और एसक्यू नाम की चीज भी होनी चाहिए? नहीं। इंटेलिजेंसी इमोशनल इंटेलिजेंसी भी हो सकती है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी भी हो सकती है। सिर्फ इंटेलिजेंसी के मायने ये नहीं है कि हम कुछ थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर लें और वो ज्ञान हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म ना कर पाए, हमारे जीवन को उससे कोई लाभ ना मिल पाए, सिर्फ उससे हम परीक्षा पास कर ले। ऐसा वाला ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है जिससे कि परीक्षा पास हो जाती है और अपन सब परीक्षा पास करके तो यहां आए हैं। उसके साथ हमने वहां पर जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है उसके साथ कुछ और भी हमें जोड़ लेना चाहिए, उसके लिए यहां हम आए हैं। वो तो है ही हमारे पास, डिग्री प्लस, वो प्लस क्या होना चाहिए वो हमारे दिमाग में रहे। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी प्रगति का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसका जैसा कॉन्सेप्ट होगा, जिसका जैसा सोच होगा, वैसे ही अपने उस लक्ष्य को निर्धारित करेगा। यदि सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लेना हमारे जीवन का उद्देश्य है तो मानिए हम बहुत असफल होंगे। हम भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं लेकिन जीवन के सुख और शांति को हासिल कर पाएंगे इसमें हमें संदेह है। हमने लोगों को वो सब सुख सुविधाएं और भौतिक संसाधन इकट्ठे करके दुखी देखा है। इसलिए ऐसा होता कि एकाध व्यक्ति दुखी है? नहीं। अगर सच्ची में पूछा जाए, बाहर से हंसते हुए चेहरे के भीतर झांक के देखा जाए तो शायद कोई उस बाहर से मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी हुई पीड़ा को समझ पाएगा। हमें वो वाली आंख अपने भीतर यहां इसलिए आए के बैठे हैं कि वो एक आंख भी हमारे भीतर प्राप्त हो जाए जिससे कि हम इन सारे अचीवमेंट्स के बावजूद भी किस चीज को मिस कर रहे हैं वो हमारे पास हो। हमारी प्रतिभा किसी एक क्षेत्र में अगर है तो क्या उसे दूसरे क्षेत्र में भी उतना ही वैसा ही नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमने अगर शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता अपनी बढ़ाई है तो हम देखें कि उस शिक्षा से हम अपने परिवेश को, यहां तक कि हम अपने आंतरिक जीवन को किस तरह से मैनेज करते हैं, वो प्रतिभा हमारे आसपास के वातावरण को कितना सुगंधित और समृद्ध कर पाती है और इतना ही नहीं अपने जीवन को भी कितना सुगंधित और समृद्ध कर पाती है। और वो सुगंध और समृद्धि किस बात की है? वो हमारी अपनी भावनाओं की है। जो जितना भावनाओं में रिच है वो वास्तव में रिच है, वो समृद्ध है, वो उतना ज्यादा सुंदर है। हम सोचते हैं कि चेहरे की सुंदरता शायद किसी कॉस्मेटिक के यूज करने से होगी, लेकिन कितना भी हम कॉस्मेटिक का अपने चेहरे पर सुंदर दिखने के लिए उपयोग कर लें लेकिन अगर मन गुस्से से भरा हो तो चेहरा बदसूरत मालूम पड़ेगा। कितना भी सजाया गया क्यों ना हो, कॉस्मेटिक्स उसे सुंदर नहीं बना पाएंगे। और अगर चेहरे पर शांति है तो जरा देखिएगा उस चेहरे की सुंदरता, उस चेहरे की सौम्यता। और अगर मन में प्राणी मात्र के प्रति प्यार है और स्नेह है तो देखिएगा जरा उन आंखों की चमक
जिनको कि अभी अभी अंजन लगा करके सुंदर बनाने की कोशिश की थी, जो इतनी सुंदर नहीं लग रही थी, और जैसे ही स्नेह और प्रेम की भावनाएं हमारे भीतर पैदा हुई, हमारी आंखों की चमक, चेहरे की दमक दोनों बढ़ गई। क्या ये चीज हम अपने जीवन में शामिल करना पसंद नहीं करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉस्मेटिक कल जाकर के और बाहर फेंक आए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। हमारे पास जो है उसमें हम क्या इजाफा कर सकते हैं, उसमें हम क्या प्लस कर सकते हैं, जो हमारी क्षमता है करने की, बस इतना ही। आपने कभी अपनी मां का चेहरा देखा जब वो आपसे प्यार करती है? उसके चेहरे की चमक देखी है आपने? वो बिल्कुल कॉस्मेटिक नहीं लगाए हो, लेकिन अगर वो आपके प्रति प्रेम से भरी हुई हो, तब उसका चेहरे की दमक देखी। फिर हम कौन सी चेहरे की दमक देखना चाहते हैं कॉस्मेटिक लगा करके? क्यों नहीं हम उससे ये मैसेज ले लेते हैं कि चमक तो मेरे भीतर के भावों से आएगी, बाहर की चीजों से नहीं आएगी। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से आई हुई चमक के लिए हमें दूसरे की चमक को नष्ट करना पड़ता है, और ये हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाली चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं दूसरे के जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मैं इतने इंटेलेक्चुअल्स के सामने बस अपनी बात को इनडायरेक्टली ही कह रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आप समझदार हैं, हम कदम कदम पर अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए अगर दूसरे के चेहरे को कुरूप बना रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई प्रतिभा नहीं है, इसमें हमारा कोई गौरव नहीं है। हम देखें कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के साथ साथ हमने अपने आसपास के परिवेश को कितना सुगंधित और सुंदर बनाया है, तब वास्तव में वो हमारी सुंदरता हमेशा कायम रहेगी। आपने कभी साहस और आशा से भरे हुए चेहरे की चमक देखी है? देखी होगी। आपने कभी किसी संतोष और अत्यंत जीवन में जो चीजें पाई हैं उनमें संतुष्ट व्यक्ति के चेहरे की चमक देखी है? तो क्यों फिर हम और किसी चीज को अपने जीवन में सुंदर बनाने के लिए शामिल करें, जबकि अपने जीवन को सुंदर बनाने की चीजें मेरे अपने भीतर खुद हैं? हम यही तो चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना। इसलिए तो हमने इतनी सारी कोशिशें की थी, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, इतना हाई एजुकेशन हमने लिया है, कहे के लिए लिया है और आगे भी लेंगे, लेना ही चाहिए। लेकिन हाई एजुकेशन लेने के बाद यदि हमारा जीवन सुंदर और दूसरे के लिए सुगंधित नहीं बनता है, तो मानिएगा कि अभी कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं, बस इतना ही। हमने कुछ गलत कर लिया है ऐसा नहीं कह रहा हूं, हमने कुछ मिस कर दिया है, वो हमें उसमें ऐड करना चाहिए। तो इस तरह हमने ये समाधान खोज लिया। धार्मिक अनुष्ठानों में भी अगर भावनाओं की निर्मलता नहीं है, तो वे धार्मिक अनुष्ठान हमारे जीवन को सुख और शांति नहीं दे पा रहे, वास्तव में नहीं दे पा रहे। आज जितना बाहरी प्रभावना और बाहरी चमक दिखाई पड़ रही है, काश उतनी ही भीतर भी चमक हमारे भीतर आ सकती। पूजा करके उठने वाला बाहर जाकर के किसी को कहना नहीं पड़ता कि ये पूजा करके आया है, व्यक्ति को दिखाई पड़ने लगता कि सचमुच इनके चेहरे की चमक बन गई है, बढ़ गई है, आंखों में एक विशेष प्रकार की रोशनी आई है, ये अभी पूजा करके आए हैं, ये तो कितना प्यार से बोलते हैं। नहीं, लेकिन हो सकता है कि पूजा करके बाहर आते ही और हम दूसरे के बारे में और ठीक वैसे ही ईर्ष्या से भर जाएं जैसे कि पूजा करने से पहले थे, तो बताइएगा उस पूजा के अनुष्ठान ने हमारे जीवन को क्या दिया, हमारे जीवन में उसने क्या किया? क्या सिर्फ क्रिया के दोहराने से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा? क्या कुछ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का नॉलेज हासिल करने से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा? नहीं होगा, दोनों चीजों से नहीं होता। न धार्मिक क्रियाएं दोहराने से होता है, न कि बहुत बड़ा संसार का ज्ञान प्राप्त कर लेने से होता है, जीवन तो परिवर्तित होता है हमारी भावनाओं से। एक मेढक की पूजा के लिए ले जाई जा रही पांखुड़ी भी हमारी पूजा की थाली से बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है? सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे भावनाओं की निर्मलता है, हार्दिकता है। टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी, वो मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन इसके पहले हम एक प्रश्न और देख लें कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी और हम अपने जीवन को किस तरह से आगे ले जाएं, कैसे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंसंट्रेट करें। हमारा लक्ष्य, जैसे आज जो 10th में है उनका लक्ष्य है कि वो IIT को फेस करने जा रहे हैं आगे, या कि जो 12th में है वे भी इसी कोशिश में है कि वे PET, PMT या किसी और CS इस तरह के किसी एग्जाम की तैयारी करें, और इन तमाम विकृतियों और विषमताओं के बीच वे अपने रास्ते को बहुत आसान बना सकें। प्रश्न ये है, समाधान उसका चाहिए, हाउ टू कंसंट्रेट, कैसे हम कंसंट्रेट करें अपने आप को इन तमाम चीजों के बीच अपने लक्ष्य के लिए। ये सबके पास एक प्रश्न है, ये प्रश्न सबका है। कैसे हम इन तमाम धार्मिक अनुष्ठानों के बीच अपने आप को कंसंट्रेट करें अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उस वितरकता को पाने के लिए। यह प्रश्न वहां भी लागू होगा, जब भी कोई पूजा करने भीतर घुसे और वितरक भगवान के सामने पूजा करे और फिर वापस लौटे, तब वो खुद अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को नापे कि मेरे भीतर इस पूजा के अनुष्ठान से क्या हुआ। मुनिजनों के चरणों में जाकर के बैठ के और फिर बाहर निकले तो फिर एक बार भीतर झांक के देखे कि मैं जैसा उस कमरे के भीतर घुसा था उससे बाहर निकलने पर मेरे अंदर कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए, या कि मैं ज्यों कहते हूं तो फिर क्या मतलब हुआ ऐसे जाने से। जाना बंद कर दो ऐसा नहीं कह रहा हूं, पूजा बंद कर दो ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जो मुझे अचीव करना था वो मैं मिस कर रहा हूं, ये तो दिमाग में बना रहा है। ऐसा ना हो कि मैं लगातार 2500 वर्ष तक ये क्रियाएं दोहराता रहूं और अचीवमेंट के नाम पर मैं फिर जीरो रहूं, तो दूसरे को मैसेज क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं इन सब चीजों के बीच अपने को कैसे कंसंट्रेट करूं और उस लक्ष्य को पाकर के लौटूं? अगर मैं पढ़ने की टेबल पर बैठा हूं तब, और या कि मैं पूजा की थाली लेकर के और भगवान के सामने बैठा हूं तब, दोनों स्थितियों में मैं अपने को कैसे कंसंट्रेट करूं? इतनी सी ही चीज है। कंसंट्रेट तो हम कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन तुम्हारा होता ही है। आप क्या सोच रहे थे कि अलती पलती मार के आंख मीच करके और बैठ जाने का नाम कंसंट्रेशन है? ये मेडिटेशन इस तरह की होती है क्या चीज? तब तो फिर इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं जिन पे सिर्फ मेडिटेशन और कंसंट्रेशन सिखाया जाता है। वहां से बाहर निकलने वालों को भी देख लीजिएगा, वे कैसे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना, हाथ कंगन को RC की क्या आवश्यकता, मैं क्यों कहूं कि वे कैसे हैं। आप देख लीजिएगा, अगर सेटिस्फेक्शन हो तो ओके, शुरू करिए, वही प्रक्रिया शुरू करिए। वरना 24 घंटे कोई अपने को अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट कर सकता है वो विद्या सीख ले, इतना ही करना है। वो विद्या हमारे पास है, वो क्षमता हमारे पास है कि हम 24 घंटे अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट हो सकते हैं। पढ़ना मेरा अगर काम है और पढ़ करके अपने जीवन को ऊंचा उठाना मेरा लक्ष्य है, तो फिर मेरी आंख उसी पर लगी हुई है। तब मैं ये नहीं देखूंगा कि इस पढ़ाई के दौरान मुझे अच्छे कपड़े पहनने मिले कि नहीं, अच्छा खाने मिला कि नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे अपनी सुख सुविधाएं पूरी दी हैं या नहीं। मेरा तो लक्ष्य सिर्फ अपने उस जगह तक पहुंचने का है जो मैंने सोच रखा है। तो मुझे सिर्फ टेबल से कोई नहीं पड़ता, चाहे वो लोहे की हो चाहे सोने की हो, टेबल पे बैठने वाला पड़ता है, टेबल कुर्सी नहीं पड़ते हैं। कपड़े पहनने वाला पड़ता है, कपड़े नहीं पड़ते हैं। ये ध्यान रखें हम इस चीज का। लेकिन आज तो हम पढ़ने वालों को देखते हैं ऐसा लगता है जैसे कि किसी फैशन परेड में शामिल हुए हों। वे इंस्टीट्यूशंस नहीं जा रहे हों, पढ़ने नहीं जा रहे हों, वे किसी फैशन परेड में जा रहे हों शायद, ऐसा लगता है। उन्हें लगता है कि शायद वे इस तरह करके और बात अच्छे पढ़ाकू होंगे। ठीक इसी तरह उस, आप बुरा नहीं मानना, ठीक इसी तरह एक लाइन जाती है पीले दुपट्टे सफेद कपड़े पहने हुए मंदिर की तरफ जाती दिखाई पड़ती है। ठीक वैसे ही लगता है कि ये जा रहे हैं धर्मात्मा लोग, लेकिन उनके भीतर जैसे कि ये जा रहे हैं पढ़ाकू लोग और उनके भीतर पढ़ाई जीरो, और ये जा रहे हैं धर्मात्मा लोग उनके भीतर धर्म जीरो। क्या हुआ इन सब चीजों का जरा विचार करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। हम बैठे हैं सब, हमारे अपने युवा बैठे हैं, हमारे अपने उनके पेरेंट्स बैठे हैं और सब बैठे हैं, छोटे से लेके बड़े तक बैठे हैं, हम सब बैठे हैं। लेकिन इन चीजों पर हमें अब बहुत बहुत गौर से विचार करना पड़ेगा। हम 24 घंटे कंसंट्रेशन कर सकते, मैं ये कह रहा हूं, यदि हमारी भावनाओं में निर्मलता है तो। इतनी सी ही चीज, और कुछ भी नहीं कहना मुझे। एक नाई सेविंग कर रहा है लोगों के बाल बना रहा है, मैंने थोड़ा रुक करके शब्द को बोला है क्योंकि दूसरा शब्द जो एक जनरल चलता है वो मैं नहीं बोलना चाहता। भाषा की अहिंसकता भी दिनों दिन गायब होती जा रही, जीवन की तो हो ही रही है, भाषा भी अहिंसक होनी चाहिए। कोई वहां पर बाल बनवाए नहीं जाते बल्कि निकलवा और जाते हैं, और हम कह रहे हैं कि बाल बनवा रहा है, जैसे कि नए और बनवा रहा हूं पहले से थे ही नहीं, वो भाषा है। सब्जी काटना नहीं बोलते, सब्जी बनाना बोलते हैं। हमारी भाषा की अहिंसकता, हमारे अपने भावनाओं की, 24 घंटे के कामों में अगर हमारे अंदर भावनाओं की निर्मलता है, पढ़ते समय भी भावनाओं की निर्मलता, दूसरे को डिफीट करने का भाव नहीं है, भावनाओं की निर्मलता और क्या है, मुझे अपना अधिक से अधिक जीवन को समृद्ध बनाना है, अच्छा बनाना है, इसलिए मैं बैठा हूं पढ़ने की टेबल पर, मेरे दिमाग में अभी और कोई चीज नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या करेंगे, मुझे इससे क्या लेना देना, दुनिया कहां जा रही है, जा रही होगी, मुझे कहां जाना है, मुझे कैसा बनना है, ये मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, इसलिए मंदिर जा रहा हूं। बस दोनों जगह लगाते रहिएगा। और वो क्या विचार कर रहा है, उससे पूछा जाता है कि तुम जब लोगों के बाल निकालते हो, दाढ़ी साफ करते हो, तब तुम्हें क्या लगता है, वो कहता है कि मैं तो इसे भगवान की पूजा मानता हूं, भगवान ने यही तो कहा है कि अपने मन की मलिनता को निकाल के अलग करना, जब मैं लोगों के बालों की मलिनता को अलग करता हूं, उनके दाढ़ी को साफ करता हूं, तब मुझे हमेशा ध्यान बना रहता है कि ऐसे ही मुझे अपने जीवन की गंदगी को उठा करके बाहर फेंकना है, जैसे मैंने इसके सिर पर लगी हुई गंदगी को उठा करके बाहर फेंक दिया, कचरे को बाहर कर दिया है। ठीक इसी तरह विनोबा अपने कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं और लोग उनसे कह रहे हैं कि आपके पास तो और बहुत बड़े बड़े काम है, वो करिएगा, ये छोटा सा काम हमारे जिम्मे छोड़ दीजिएगा। वो कहते हैं ये छोटा काम नहीं है, मैं अपने कमरे में झाड़ू लगाने का काम ये सोच के करता हूं कि भगवान ने यही तो कहा था कि अपने भीतर की गंदगी उठा के फेंकना, मैं अपने कमरे की गंदगी उठा के फेंकते समय यही विचार करता हूं कि कम से कम अपने कमरे में गंदगी फैलाऊं, एक चीज, और अगर गंदगी फैल जाए तो मैं दूसरे को उसे हटाने के लिए इंतजार ना करूं, स्वयं उस गंदगी को हटा दूं। इतना ही तो, ये है भावना, ये 24 घंटे हो सकती है। पढ़ने की टेबल पर बैठने वाले हम ऐसी भावना कर सकते हैं, रोटी बनाने के लिए बैठी हुई मां ऐसी भावना कर सकती है, दुकान पर बैठा हुआ सेल्समैन ऐसी भावना कर सकता है, ऑफिस में बैठा हुआ और एक ऑफिसर ऐसी भावना कर सकता है कि मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूं, और मेरा कर्तव्य लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का है और साथ साथ मेरे अपने जीवन को अच्छा बनाने का, मेरे जीवन से किसी को दुख पहुंचे, मेरे जीवन से किसी को क्षति हो, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्या ऐसी सोच के साथ हम 24 घंटे नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, वही कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को सीखने के लिए जरूर इतना करना कि सुबह शाम 5-5 मिनट अपने जीवन के जरूर निकालना। कितने भी पढ़ने वाले हो, कितना भी मंदिर जाने वाले हो, कितना भी कुछ करने वाले हो, 5 मिनट सुबह से जरूर बैठ करके उस कंसंट्रेशन के बाद, दिन भर वो कंसंट्रेशन कैसे बना रहेगा इसके लिए बैटरी चार्ज करने के लिए सुबह 5 मिनट बैठ। कुछ करना वरना कुछ नहीं है, बस शांत होकर के सोचना है कि आज जब तमाम विषमताएं और विकृतियां मुझे घेरेंगी, मैं सावधान हूं, मैं शुरू करता हूं अपनी यात्रा। जैसे कि मैं अपने किट से लैस होकर के घर से बाहर निकलता हूं, बस वैसे ही मैं अपने भीतर, मैं बाहर की विकृतियों से अपनी प्रसन्नता को डैमेज नहीं होने दूंगा। मैं बाहर की विषमताएं और विकृतियों के बावजूद भी अपने मन को अशांत नहीं होने दूंगा। मैं अपने मन की शांति को नहीं खाऊंगा, मैं अपने साहस को नहीं खाऊंगा, मैं अपने प्रेम और स्नेह को नहीं खाऊंगा, जहां की सारे लोग घृणा और द्वेष से भरे हैं इसके बावजूद भी। ये कंसंट्रेशन, और क्या करना कंसंट्रेशन। मैं अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट हूं, मैं अपनी भावनाओं को निरंतर उसी लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला बनाए रखता हूं। अगर ये मैंने अपने जीवन में कर लिया तो शायद जो जो चीजें हम कर रहे हैं वे सब अच्छी भावना से किया गया एक कर्म अनंत फल देता है, बुरी भावना से किया गया वही अच्छा कर्म शून्य फल देता है। यह गणित का हिसाब है। विनोबा की मां को मन में आया कि 1 लाख चावल चढ़ाएं भगवान के सामने, गिनने बैठ गई वो। विनोबा के पिताजी आए, गणित के बढ़िया प्रोफेसर थे, कहले क्या कर रही तुम बुद्धू हो, 1 लाख चढ़ाना ना। अरे 10 ग्राम चावल तोड़ लो और गिन लो, 10 ग्राम में कितने चढ़ते हैं, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो, हम गुणा करके बता देंगे कि कितने ग्राम में 1 लाख चढ़ेंगे, बस उतने ग्राम तोल करके समझ लो कि हो गए 1 लाख, और अगर कम लगे तो 2-4 और डाल लेना बस। और भगवान थोड़ी गिनने जा रहे हैं कि तुमने 1 लाख चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, हमने ऐसा लॉजिक दिया, लॉजिक तो लॉजिक है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ठीक है, परफेक्शन है इस लॉजिक में। तो मैं विन्या से पूछूं, विनोबा के बचपन का नाम विन्या था, मैं उनसे पूछूं, 11 साल के अपने बेटे से पूछूं, देखो बेटे के पिता से तो नहीं, अपने बेटे से पूछूं कि तू क्या कहता है इस बारे में। और स्कूल से लौट के आया विन्या, मैं 1 लाख चावल गिन के भगवान के सामने चढ़ाऊं या कि तेरे पिता की बात मान करके तौल करके और हिसाब किताब से चढ़ाऊं। तो उन्होंने कहा कि मां तुम पूजा गणित के हिसाब से करना चाह रही कि भावना के हिसाब से। बस मैंने कहा समझ गई मैं, गणित के हिसाब से तो तौल के चढ़ाए जा सकते लेकिन एक एक चावल गिन करके पूरी भावना के साथ अगर चढ़ाना है तब तो फिर एक एक चावल के साथ भावना जुड़नी ही चाहिए, तभी वो 1 लाख से की गई पूजा उतनी देर मेरी भावनाएं निर्मल होंगी जब जब भी मैं एक एक चावल उठा के भगवान के सामने चढ़ाऊं। भावनाओं की निर्मलता महत्वपूर्ण है। और आज क्या हुआ, जहां भावनाओं की निर्मलता गड़बड़ाई वहां ढेर सारे प्रश्न खड़े हो गए। आज कितना वायलेंस है, कितनी वल्गरिटी है, कभी आपने सोचा? जब से समझदार होता है एक व्यक्ति तब से लेकर के 10-12 बरस से लेकर के 40 बरस तक हमारा टेलीविजन हमको क्या परोसता है, लगभग 40,000 वल्गरिटी के केस और 70,000 वायलेंस के केसेस वो हमें परोसता है और हमारे मन पर उन सब चीजों के प्रभाव पड़ते हैं, हमारी भावनाओं को वो कलुषित करता है। उसके बीच में हमें ट्रेवल करना है, मैं ये कह रहा हूं, उन तमाम विकृति और विषमताओं के बीच। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि कल से आप टेलीविजन ऑफ करके रखें, नहीं, खूब आराम से। मैं कौन होता हूं, आपने खरीदा है, मैं कौन होता हूं? लेकिन अगर वो सारी चीजें मेरी शांति को भंग करती हैं, मेरे चेहरे की चमक को गायब कर देती हैं, मेरे जीवन की सुंदरता को गायब कर देती हैं, तब तो फिर उन चीजों को बंद करने का निर्णय कोई और क्यों लेगा, मैं स्वयं लूंगा। ये मेरे भीतर, ये टैलेंट मेरे भीतर आना चाहिए, ये प्रतिभा मेरे भीतर जागृत होनी चाहिए कि मैं अपने निर्णय, अपने जीवन की चमक को बरकरार रखने के लिए स्वयं लूंगा, किसी और के निर्णय पर नहीं, किसी की बैशाखी नहीं लूंगा, मैं स्वयं अपने जीवन से। ये मेरे जीवन की चमक को, चेहरे की चमक को कम करने वाली चीजें हैं, बाह्यात चीजें छोड़ दो। मेरे भीतर बायलेंस, मेरे भीतर वल्गैरिटी पैदा करने वाली चीजें, मेरे चेहरे की चमक को गायब करने वाली चीजें हैं ये। तो आप अपने टैलेंट का, आप अपनी प्रतिभा का क्या ऐसा सदुपयोग करना पसंद नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आज हम अपनी भावनाओं को बालाए ताक, उर्दू का शब्द है, किनारे रख देना, क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं? हमारी अंतरात्मा की आवाज जो हमारी भावनाएं हैं, फिर हम कैसे कंसंट्रेट करेंगे बताइए? कंसंट्रेशन तो भावनाओं के द्वारा होता है, भावनाओं की निर्मलता के द्वारा होता है। जिसकी जितनी भावनाएं निर्मल है वो उतना कंसंट्रेट होगा अपने लक्ष्य के प्रति, वो उतना सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। नैतिकता का बल बहुत बड़ा बल होता है, ये ध्यान रखना। और हम वो खो दें और फिर चाहें कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सारी चीजें वो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? कोई कहने से तो आता नहीं कि मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया आपके भीतर, आ गया क्या? आएगा कैसे? जब तक कि हमारे अपने जीवन में नैतिकता नहीं आएगी, हमारी भावनाओं की पवित्रता नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी ये सारी चीजें। और फिर अपनी भावनाओं के चलते हमने क्या करा आज? थोड़ा सा मैं 10 मिनट और लूं, मैं 10:15 बज गए क्योंकि आगे का गड़बड़ाया गया, यदि मैं ज्यादा लूंगा ये तो मुझे ही देखना पड़ेगा। आप भले ही कह दें कि आज संडे है, लेकिन ये वाला वैसा संडे नहीं है आज। हाँ, ये इसमें तो बिल्कुल शेड्यूल टाइट है, और बिल्कुल 1 बजे तो मैं, घड़ियां अगर सही होंगी तो ठीक 1 बजे यहां आ जाऊंगा, ये आप मान के चलिएगा। आप आएंगे या नहीं आएंगे मैंने कभी चिंता नहीं की इस चीज की, हाँ ना मैंने कभी ये चिंता की है कि इन पेपर वालों ने मेरी न्यूज छापी है कि नहीं छापी। काम करना, एडवर्टाइज कम करना, अपना काम करना, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं। पंक्चुअल रहना, कभी भी जो करना है उसके लिए, अगर आप 5 मिनट लेट हुए तो मायने गया कि आपके लिए 24 घंटे और 5 मिनट का दिन नहीं होगा, 24 का ही होता है। आप 5 मिनट लेट हुए हैं इसका मतलब है कि आपने अब आगे के दिन के लिए 23 घंटे 55 मिनट का बना दिया है, क्योंकि वो काम आपको कल करना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो दिन आपका जीरो हो जाएगा, आपको तो पेंडिंग के सारे काम, वो तो उस दिन का तो कुछ किए नहीं आपने, आप सोच रहे हैं इस चीज को। तो मैं ये कह रहा था कि इन भावनाओं की कलुषता के चलते हमने कितना कुछ करा। जैसे हमने कहा कि मिल्क इज ए जस्ट लाइक मीट, एग इज ए जस्ट लाइक वेज, कितना बड़ा ब्लफ यही ना। खान पीएम की चीजों में हमने इस तरह के आर्गुमेंट्स दे करके और अपने जीवन को कलुषित किया है। विचार करें हम, क्योंकि शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, आत्मिक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये सारे विकास जरूरी हैं। अकेले शारीरिक विकास करने वाले पहलवान का तमगा लगा सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अकेले बौद्धिक विकास वाले बहुत सारी बेईमानियां करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास और आत्मिक विकास हुआ है, तब फिर आप अपने जीवन को बहुत सुंदर और सुगंधित बना पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि जब मैं शारीरिक विकास की चेष्टा करूं तो इस भाषा में ना सोचूं कि मुझे प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है और विटामिन्स कितने लेने, मिनरल्स कितने लेने हैं और वाटर इंटेक कितना है, ये जो 6 चीजें जरूरी हैं, फैट वो कितना लेना है, इस भाषा में नहीं सोचेंगे। वरना तो आप देखेंगे कि एग में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन्स है और कितना मिनरल्स है और कार्बोहाइड्रेट तो मिल है, आप फिर इस भाषा में सोचेंगे? ये भाषा नहीं है, ये आत्मिक विकास की भाषा नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा सुंदर हो, चेहरे में चमक हो, इनसे नहीं आएगी चमक। चमक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से नहीं आती बाबा, आती होती तो बहुत लोगों को आ गई होती। ये हम जरूर अपनी भावनाओं में ध्यान रखें। मैं खाऊंगा तब भी भावना का ध्यान रखूंगा। तब क्या हुआ कि हमने एग को शाकाहार कहना शुरू किया और मिल्क को मांसाहार कहना शुरू किया। एक क्वेश्चन था बच्चों का, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। असल में कहना तो मुझे अपनी बात है, बहाना आपका है। आपने नहीं भी पूछा हो तब भी मैंने आपकी तरफ से पूछ करके क्वेश्चन पुटअप कर दिया, आंसर मुझे देना है। मुझे आप पर कोई चीज थोपनी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। मैंने आपको यहां पर इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अपने मुताबिक आपका जीवन बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। इस धोखे में नहीं रहिए आप कि मैं आपको यहां बुलाकर आपको सम्मान देकर आपके ऊपर ये प्रेशर डालूंगा कि चूंकि मैंने आपको एक तगड़ा सम्मान दिया इसलिए आपको ये सब करना है। नहीं, कृपा करके ऐसी हल्की सोच मत रखिएगा। हां, ऐसा सब संसार में होता है लेकिन हमारा सोच वैसा नहीं है, ना हमारा होना चाहिए सोच। हमने तो सिर्फ एक क्वालिटी को जो आपने अचीव की है उसके लिए पीठ थपथपाई है, और इस आशा से कि आपके भीतर ऐसी बहुत सी क्वालिटी हैं, अगले बार जब मिलेंगे तो हम उन क्वालिटीज को भी आपके भीतर जनरेट होते देख सकें, इसके लिए और कुछ नहीं। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं, इसलिए जितनी भी बातें आपको कह रहा हूं वो सिर्फ फॉर नॉलेज, और वो नॉलेज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉलेज वही है जो जीवन को परिवर्तित करे। ये आपका काम है कि उस नॉलेज का आप क्या यूज करते हैं। जनरली हमें ये लगता है कि एग वेज है, फर्टाइल एग हो चाहे अनफर्टाइल एग हो, डॉक्टर वेक्स्टर की किताब पढ़ें, सीक्रेट्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें आई एन एग एक चैप्टर है, उनका प्रयोग है। वे बहुत बड़े वनस्पति शास्त्री रहे हैं और उनकी लेबोरेटरी में उन्होंने प्लांट्स के साथ पॉलीग्राफ मशीन अटैच करके उनकी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करने का बहुत बड़ा काम किया, और वे एक बार अपने कुत्ते को खिलाने के लिए दो अंडे अनफर्टाइल एग वाले के यहां से लेके आए हैं। वे उसे निर्जीव मान रहे हैं ये सोच के लाए हैं, और उन्होंने जैसे ही अपने लेबोरेटरी के भीतर उस एक एग को ब्रेक किया, सारे पॉलीग्राफ मशीन जो जुड़ी हुई थी प्लांट्स से, उन्होंने बहुत तेजी से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और ये कहा कि कोई हमसे ज्यादा हाई सेंस ऑर्गन वाला यहां पर मार दिया गया है। ये आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। फिर से अब की बार दो और एग लेके आए हैं उसी अनफर्टाइल एग वाले के यहां से, जिसको वो कह रहा है कि अनफर्टाइल एग, इसमें से चूजा नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्म्स के कांटेक्ट में आए नहीं है। एग एक्चुअली क्या है, वो चूजे की ओवरी है जिसपे कि स्पर्म के कांटेक्ट होने के बाद फिर फर्टाइल होकर के और चूजा बनेगा। इंक्यूबेटर में अगर स्पर्म डाल करके एग को रख दिया जाए 21 दिन के अंदर निकल आएगा चूजा, विदाउट स्पर्म्स नहीं निकलेगा। लेकिन वो है क्या चीज एग, वो निर्जीव नहीं है, वो उसकी बॉडी कंस्ट्रक्ट करने के लिए रॉ मटेरियल है जो उसमें चूजा अपनी बॉडी कंस्ट्रक्ट करेगा, वो यॉक। उसको हमने कह दिया कि शाकाहार है, यानी ये तो ऐसा हो गया जैसे कि जैसे हम अपने मां के पेट में यहां पर अपने बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो चीज निकाल करके हम खाएं और कहें कि वेज है। अरे वाह, तब तो हमारे नॉलेज को तो हमें थोड़ा इंप्रूव करना पड़े। हां, ये नॉलेज तो जरा ठीक नहीं मालूम पड़ता। और वो वेक्स्टर कह रहे हैं कि दो एग लेके आया और उसमें से मैंने एक एग के साथ भी पॉलीग्राफ मशीन लगा दी, क्योंकि पॉलीग्राफ मशीन जहां जीवन है वहां काम करेगी, प्लांट्स में जीवन है पॉलीग्राफ मशीन इंडिकेशन देती है। ठीक ऐसे ही मैंने उस एक अंडे से भी पॉलीग्राफ मशीन गैल्वेनोमीटर से 10 गुनी सेंसिटिव होती है। दूसरे वाले एक्ट को लेबोरेटरी के उस छोर पर जाकर के ब्रेक किया तो सारे प्लांट्स ने तो कहा ही, और ये जो पॉलीग्राफ मशीन जो एक्ट से लगी थी उसने भी इंडिकेशन किया कि मेरी ही जाति का मेरे ही जितना कोई यहां पर मर गया है। तब उन्होंने लिखा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये क्या है, सीक्रेट्स ऑफ प्लांट्स आई ए नैक, मुझे साइंस समझ में नहीं आ रहा है, पर वहां जीवन है मैं ये कह सकता हूं। ये उन्होंने अपने उसमें लिखा। क्या इससे हमें फिर से अपने नॉलेज को और अधिक अच्छा नहीं बनाना चाहिए, हमें और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या कि इसी विश्वास करके और हमें एग को शाकाहारी मान लेना चाहिए और मिल्क को हम मांसाहारी मान रहे हैं, जबकि आज तक किसी भी मिल्क में स्पर्म्स डाल के इंक्यूबेटर में रखने पर कोई बछड़ा नहीं निकला। निकला क्या? अभी तक नहीं। वो प्रकृति में किसी जीव को आगे रीजनरेशन के लिए नहीं आया है, वो तो जो रीजनरेट हुआ है उसके लिए पोषण के लिए है। मिल्क की कैपिलरीज और ब्रेड की कैपिलरीज में बहुत फर्क है, तीनों की प्रोटीन में बहुत फर्क है। कैसीन मिल्क की प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन ब्लड की प्रोटीन है, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन का नाम है एग की प्रोटीन का नाम। क्या ये डिफरेंस हम नहीं करना पसंद करेंगे जबकि साइंस कह रहा है? बहुत सारी चीजें हैं भाई, मैं आपको क्या कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि इन सब प्रश्नों के समाधान जो लोग दे रहे हैं उन पर एक बार जरूर विचार करना, और फिर इन सब चीजों का समाधान स्वयं खोजने की कोशिश करना, अपने खान पान रहन सहन इन सब चीजों में अपनी भावनाओं को मुख्यता देना, देखा देखी ना पहनना ओढ़ना ना खाना पीना, मेरी भावनाओं को जो निर्मल करेगा वो पहनूंगा ओढ़ूंगा वो खाऊंगा पीऊंगा, मेरा जीवन मेरे द्वारा रेगुलेट होगा दुनिया के द्वारा नहीं, दुनिया मुझे कैसा चलाना चाहती है वो जाने, मैं अपने जीवन को जैसा बनाना और चलाना चाहता हूं वो मैं जानता हूं, और मेरा कॉन्सेप्ट बहुत मेरे अंदर क्लियर है, मेरा विजन बहुत क्लियर है कि मुझे अपने चेहरे की चमक और जीवन की शांति बनाए रखनी है, उसके लिए मैं पढ़ रहा हूं, उसके लिए मैं धर्म कर रहा हूं, उसके लिए मैं जो भी कर रहा हूं मैं सब उसी के लिए कर रहा हूं। और लास्ट में जो टॉलस्टॉय की कहानी थी वो मुझे सुनानी है, फिर अपने को बैठ के नमोकार करना है, फिर आप जाएंगे, फिर पूरा हो जाएगा, फिर भी अधूरा रह जाएगा, फिर से मिलेंगे अपन। आप ऐसे नहीं बच सकते, और आपका पता मेरे पास में है, हाँ मैं आपको कॉल कर दूंगा, और आप मुझे विश्वास है कि मैंने आपको अपना माना है तो आप भी मुझे अपना मानकर मेरी बात पर ध्यान दें। टॉलस्टॉय ने ये मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षण है, मैंने पिछले बार भी इनको जब्त करके रखा था, अभी भी मैं इन सुखद क्षणों को अपने भीतर जब्त करके रखे। मुझे अपना साधु जीवन जितना अच्छा लगता है, मैं आपसे ईमानदारी से कहूं मेरे अपने एजुकेशन के समय का जीवन भी मुझे बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगता था, और इसी वजह से जब फिर से वही माहौल यहां देखता हूं तो मुझे लगता है मैं फिर से एक बार और सब अपने कलीग्स के बीच और फिर आ गया हूं, और हम अपने नॉलेज को इसलिए गेन कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि जितने भी 18 कलीग्स हमारे साथ थे उनने कभी भी, हमें मालूम है कि कोई ऐसी शर्ट नहीं पहनी होगी, कोई ऐसा पैंट नहीं पहना होगा जो दूसरे की आंख को चुभे। हमारे जब साहब ने यह कहा था कि तुम लोगों ने क्या तय कर लिया है कि इसी तरह कपड़े पहनोगे, हमने तो कभी तुम लोगों को ऐसे देखे ही नहीं, बस बहुत सिंपल और सोवर, तो कैसे डिसाइड कर लिया, हम लोगों का ध्यान ही नहीं गया, पढ़ना हमारा लक्ष्य है, बाकी चीजें तो अपने आप, ध्यान क्या करना उन चीजों का। इसलिए मुझे वो जीवन भी याद है। ऐसे ऐसे वाक्या उस जीवन के हैं, अभी तो इंट्रैक्शन हो ही नहीं पाया इतने शॉर्ट पीरियड में, कभी बैठे और उन चीजों को एक दूसरे से मिल करके, आपके जीवन के भी अनुभव मुझे सुन करके अच्छा लगेगा, लेकिन क्या करें बहुत सारी चीजें बहुत फॉर्मल हो जाती हैं ये चीजें बहुत। मैं तो सोचता था कि अनफॉर्मल, तो अनफॉर्मल के लिए तो यही है कि मेरा एड्रेस तो आपके पास है, आप पता कर लीजिएगा, और फिर बिल्कुल अनफॉर्मली और अपन बैठ के उन सब चीजों को भी करेंगे। टॉल्स्टॉय ने एक ओ हेनरी बहुत अच्छे राइटर हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छी उन्होंने स्टोरीज लिखी हैं, उनकी एक स्टोरी है द मास्टर पीस, ए लाइफ लास्ट लीफ है ना, पढ़ी होगी शायद बच्चों ने, पढ़ी हो सकती है। उसमें कोई विशेष नहीं है, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट रहता है, वो बूढ़ा हो जाता है, वो अपने अंडर में दो बहनों को और अपना आर्ट विरासत में देने की कोशिश करता है, और वो दोनों उसके पास में रहती हैं। एक दिन क्या होता है कि उसमें से एक बहन जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो खिड़की पे खड़ी हुई है और बाहर देखती है आंधी में, और सामने का जो पेड़ उसको बहुत प्यारा लगता है, उस पेड़ में से ढेर सारी पत्तियां टूट करके दूर उड़ जाती हैं। वो बहुत दुखी होती है, मेरा इतना प्यारा पेड़ और उसमें से इतनी सारी पत्तियां झड़ गई, मेरा इतना प्यारा जीवन, इसमें से भी ऐसे ही एक एक करके सारे दिन खत्म हो जाएंगे। और एक ऐसा एसोसिएशन उसका हो गया कि जब जब एक पत्ती गिरेगी मेरा जीवन भी उतना ही नष्ट हो जाएगा, और जिस दिन इसमें से आखिरी पत्ती गिरेगी पेड़ में से, उस दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। यह सोच उसके भीतर आ गया, इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी, इसके बावजूद भी आ सकता है। अब क्या करें, वो तो बहुत डिप्रेस हो गई। अब वो जो बूढ़ा कलाकार है उसे बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कहती कि नहीं, अब क्या मतलब लाइफ का, रोज रोज उसमें से पत्तियां टूट रही हैं, रोज रोज जीवन समाप्त होता जा रहा है, और धीरे धीरे करके वो अस्वस्थ होकर के बिस्तर पर पड़ गई। रोज खिड़की खुलती थी, आज कितनी और पत्तियां बची, बस थोड़ी और रही, थोड़ा जीवन और शेष रहा, वो अपने मरने का इंतजार कर रही। कभी कभी जीवन में अपनी सारी उपलब्धियों के बावजूद भी जो एक निराशा आती है, सारा सब कुछ जो हासिल किया वो बेमानी मालूम पड़ने लगता है, उन क्षणों में क्या हमारे जीवन में ऐसे ही घटित नहीं होता होगा? क्यों? क्योंकि उस समय हमारे भीतर कोई आध्यात्मिकता नहीं है ना, आत्मिक जो हमारा ज्ञान है वो कम है, जिसका आध्यात्मिक और आत्मिक ज्ञान है वो इन क्षणों को भी आसानी से सॉल्व करके आगे निकल जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहूं कि जीवन में कभी ऐसा घटित हो तब तब के लिए ये चीज अपने साथ बांध के रख लेना, कभी घटित ना हो मैं तो भावना यही भावूंगा, सब अत्यंत प्रसन्नता से अपने रास्ते पर आगे बढ़े, अपने जीवन को अच्छा बनाए, पर ऐसा कभी क्षण आए तब क्या करना? और उसके जीवन में ऐसा क्षण आ गया, सब समझा रहे हैं लेकिन कहां कौन समझ पाता है, जब तक कि खुद ना समझे तब कोई उसको कौन समझा सकता है। एक दिन ऐसा हुआ कि कर्टेन डाल दिए गए, उपाय यही किया जाएगा कि खिड़की नहीं खुलेगी, कर्टेन पड़े हुए हैं, खिड़की खुलेगी भी तो हवा के लिए खुलेगी, रोशनी नहीं आएगी, कर्टेन इतने हैवी कर्टेन हैं वो बाहर ना देख पाए, लेकिन उसका मन तो होता था कि बाहर देखूं कितनी लीफ और बची हुई है। और एक दिन सबके मना करने पर भी उसने खिड़की से झांक के देखा तो पेड़ पर सिर्फ एक पत्ती थी, द लास्ट लीफ। उसने कहा कि बस आज का दिन आखिरी है, और वो लेट गई। बाहर आवाज आने लगी बहुत तेज तेज पानी गिरने की, बहुत तेज तेज हवाएं चलने की, और उस बीच उसके भीतर भी तेज तेज हवाएं चल रही हैं कि इतनी इतनी विषमताओं और विकृतियों के बीच अब तो वो जीवन नष्ट हो ही जाएगा, अब तो वो पत्ती गिरी गई होगी, मैं सुबह उठ के देखूंगी और शायद मैं सुबह उठ के देख भी ना पाऊं शायद वो इस आंधी पानी में रात में ही पत्ती, और जैसे ही वो पत्ती गिरेगी मेरा जीवन भी पूरा हो जाएगा, ऐसा उसने सोच लिया। अब कलाकार जो कि बूढ़ा हो गया था, उसने बहुत दिन से कोई कृति नहीं बनाई थी अपनी, कोई आर्ट नहीं बनाया था उसने। लोग उससे कहते थे कि तुम कोई आर्ट क्यों नहीं बनाते, वो कहता था कि मैं बनाऊंगा ये मास्टरपीस, एक ही पीस और बनाऊंगा, वो मेरा मास्टरपीस होगा, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, अपने जीवन का वो मेरा आखिरी आर्ट होगा। और उसने सोच लिया और वो लालटेन और सीढ़ी लेकर के बाहर निकल गया उस आंधी पानी तूफान में, और उस पेड़ के पीछे एक बहुत बढ़िया दीवार थी, उस पर सीढ़ी लगा करके उसने अपना काम शुरू कर दिया। सारी रात आंधी पानी तूफान में उसने क्या बनाया, कौन सा आर्ट बनाया, वो दीवार और पेड़ इस तरह से थे कि उसने दीवार पर एक लीफ बनाई, बहुत सुंदर सी एक पत्ती। लेकिन कैसे, ऐसे जैसे कि पेड़ पर लगी हुई हो, पेड़ पर लगी हुई ऐसे बनाई, और इतनी आधी पानी तूफान में सारी रात गुजारने पर जब वो वापस लौटा तब तक इतनी वृद्धावस्था होने से जीवन पूरा हो चुका था। लालटेन नीचे रखी है, सीढ़ियां वहां पड़ी हैं, और वो आराम से वहीं चिर निद्रा में सो गया। सुबह वो आर्टिस्ट उसे जगाया तो उसने आंख खोली, मैं अभी जिंदा हूं, कहा कि हां, तो उस पेड़ की पत्ती का क्या हुआ, देखो वो तो गिरी गई होगी, नष्ट हो गई होगी, आधी पानी रात में बहुत गिरा है। लेकिन उसने जैसे ही खिड़की खोली और वहां सामने दिखा कि अभी भी पेड़ पर वो पत्ती ज्यों की त्यों, अरे इतने आंधी पानी तूफान में भी पेड़ की पत्ती नहीं गिरी, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी, इतने तूफान में भी नहीं, इतने तूफान में भी मैं जीव पेड़ की पत्ती अगर सरवाइव कर सकती है तो मैं भी नहीं मरूंगी। और उसके भीतर विटल पावर, उसके भीतर का साहस जागृत हो गया, और वो भाग करके और अपने उस बूढ़े कलाकार के पास जाना चाहती बताने के लिए कि अब मैं बनाऊंगी बहुत बड़ा आर्ट बनाऊंगी, अब मेरे भीतर तो ये चीज जागृत हो गई है। और पहुंचती है तो बूढ़ा आर्टिस्ट खत्म हो चुका है, उसने कौन सा आर्ट बनाया जिस पर वो लिख के गया था कि मास्टरपीस, उसका वो आखिरी आर्ट था, वो वाकई मास्टरपीस था, जिसने कि दूसरे हारे हुए को साहस दिया, जिसने मरते हुए को जीवन दिया। क्या ऐसा आर्ट और ऐसा साइंस हमारे भीतर डेवलप हम करेंगे जिससे कि हमारा जीवन और हमारे आसपास का परिवेश बहुत साहस से भरा हुआ, सुगंधित और सुंदर हो, हमारा ज्ञान इस काम में आए, हमारी कला इस काम में आए, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। भैया अब अपन बैठ करके एक साथ नमोकार कर लें, पता नहीं फिर कब इस तरह अपन बैठेंगे, एक साथ बैठ करके नमोकार करेंगे इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन जो हमने अचीव किया है उसका हम प्रॉपर यूसेज कर सकें और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकें।
सिद्धार्थ
शरणम।
चरण कमलों की पूजा अनर्पण प्राप्त है अर्धम निर्वाण स्वाहा।